नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से योना नबी की पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ भी मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है परमेश्वर की दया। तो आइए श्रोताओ, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से योना नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा कि परमेश्वर ने योना को दूसरी बार मौका दिया, अर्थात अवसर दिया कि वह परमेश्वर के कार्य को पूरा करे, जिस प्रकार से वह हम सब के जीवन में भी बार बार मौका देता है। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे, ताकि वह हम में से प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वह आपसे बात करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके पवित्र वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। यद्यपि कि हम दूर दराज में हैं, गांव और शहरों में हैं, पहाड़ों में हैं, लेकिन एक साथ हम आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि प्रत्येक भाई बहन जब आपके वचन में से सुनते हैं तो आपका वचन प्रत्येक के कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, ताकि प्रभु प्रत्येक जीवन आपकी निकटता में आ सके, हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, संसार की हर एक बुराइयों से, हर एक प्रकार के छल प्रपंच से वे बच जाएं। हाँ प्रभु जी, आज आप उनसे बोले और बातचीत करें। इस घड़ी हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो निराश, परेशान, चिंता और तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं। पिताजी, आप उनकी भी सुधि लें, उनकी भी सहायता करें। आज अपने अध्ययन पर आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल में से योना नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और हमने देखा है कि पहली बार परमेश्वर ने योना से कहा, उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, परंतु योना ने तर्शीश को जाने वाला जहाज पकड़ा जो उसके विपरीत था। परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, और जब चिट्ठी डाली गई तो चिट्ठी योना के नाम में निकली, तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसी के कारण परमेश्वर ने जहाज पर यह संकट अर्थात विपत्ति भेजी है। अतः उसके कहने पर नाविकों ने परमेश्वर से क्षमा मांगी और तब उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां परमेश्वर की ओर से एक बड़ी मछली का प्रबंध था कि योना को निगलकर नीनवे के तट पर छोड़ दे। अब परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर उस पापी नगर पर अनुग्रह करता है। यहां संभवतः आत्मिक जागृति के इतिहास में सबसे बड़ी जागृति है। जागृति अर्थात मनुष्य का परमेश्वर की ओर फिरना, नीनवे का मन फिराव पेंतिकोस्त की घटना को छोटा बना देता है। पेंतिकोस्त के दिन कुछ ही हजार जनों ने प्रभु को ग्रहण किया था, परंतु नीनवे में हम देखते हैं कि सैकड़ों हजार मनुष्यों ने परमेश्वर की ओर मन फिराया। संपूर्ण नगर परमेश्वर की ओर फिरा था। पौलुस ने तो केवल सुसमाचार सुनाया और वह आगे बढ़ गया। उसके प्रचार से कोई भी शहर पूरा का पूरा प्रभु की ओर नहीं फिरा था। उस दिन से आज तक परमेश्वर के आत्मा का ऐसा महान कार्य कभी भी नहीं देखा गया है। मेरे मित्रों, रोचक बात तो यह है कि यह आत्मिक जागृति कलीसिया की उत्पत्ति से पूर्व की है। अब दूसरी महान जागृति भी तब आएगी जब कलीसिया इस पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी। यहां पर स्पष्ट है कि परमेश्वर किसी कलीसिया या प्रार्थना समूह पर निर्भर नहीं करता है। यदि आपके मन में यह विचार है कि एकमात्र आपकी कलीसिया या समूह ही परमेश्वर की दृष्टि में एक है, तो आप भ्रम में पड़े हुए हैं। जी हां, परमेश्वर के मन में तो कलीसिया से भी बढ़कर और कुछ है। इसमें संदेह नहीं कि कलीसिया मसीह की दुल्हन होने के कारण अनंत जीवन में प्रभु यीशु का निकटतम स्थान पाएगी, परंतु कलीसिया से पूर्व वरन मनुष्य से पूर्व ही परमेश्वर के मन में एक उद्देश्य था। परमेश्वर अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। मेरे मित्रों, आज उसका उद्देश्य है कि प्रत्येक जाति, प्रत्येक कुल, प्रत्येक भाषा से अपने लिए एक लोक तैयार करे। यह तो हम मानते ही हैं कि हम समय के अंत में पहुंच रहे हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य उसका वचन सुने। परंतु सबसे बड़ी आत्मिक जागृति अभी भावी घटना है। नीनवे की कहानी उस जागृति का एक झलक है। मेरे मित्रों, हम योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। ध्यान दीजिए कि योना के पहले अध्याय पद 2 में कहा गया है कि नीनवे एक महानगर था, और अंतिम अध्याय 4 उसके पद 11 में परमेश्वर कहता है कि क्या वह महानगर नीनवे का सर्वनाश करे, जहां सीधे हाथ से उल्टे हाथ का अंतर न जानने वाले असंख्य लोग एवं असंख्य पशु हैं। आलोचक इस पुस्तक की आलोचना करते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में नीनवे को महानगर कहा गया है। निसंदेह वे पाप में लिप्त थे, परंतु वह एक विशाल नगर भी था जिसमें बहुत से मनुष्य रहते थे। नीनवे के विषय 1845 तक कोई भी जानकारी नहीं थी, जब सर ऑस्टिन लेथर्ड ने उस प्राचीन नगर के खंडहरों की निरीक्षण किया और जॉर्ज स्मिथ ने वहां खुदाई की। वह नीनवे नगर टाइग्रस पार आज के मोसुल नगर से अलग है। वह नगर एक समानांतर चतुर्भुज के रूप में बसा हुआ था, लगभग 4 किलोमीटर लंबी और लगभग 2.5 किलोमीटर चौड़ा था। परंतु मेरे विचार में वह योना की पुस्तक में महत्व अर्थात महान शब्द के अनुपात में नहीं बैठ रहा है। जी हां, नीनवे नगर एक मैदानी क्षेत्र था जिसके चारों ओर की नदियां थी। टाइग्रिस और जॉब नदी उसका एक त्रिकोण बनाती थी। उत्तर दिशा में पर्वत श्रृंखला थी, अतः वह नगर नदियों और पर्वतों के बीच सुरक्षित था। इस क्षेत्र में अनेक मुख्य नगर थे, जिनमें नीनवे नगर टाइग्रिस नदी के निकट बसा हुआ था। आज उसे निमरूद खंडहर भी कहते हैं। काला नदी नीनवे से 27 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में थी, और खोरसाद नगर 18 किलोमीटर ऊपरी जाओ नदी पर थी, नीनवे के उत्तर पूर्व में जो बसा था। मेरे प्रियो, योना की पुस्तक में नीनवे को महानगर कहना विचित्र सा लगता है, क्योंकि उस युग में नगर शहरपनाह से घिरे होते थे और साधन होते थे, जैसे यरूशलेम राजा दाऊद और प्रभु यीशु के युग में शहरपनाह से घिरा हुआ था। नीनवे में 3 नगर शहरपनाह से घिरे हुए थे, नीनवे, कालाह और खोरसाद। परंतु क्योंकि नीनवे उनकी राजधानी था, अतः संपूर्ण देश को नीनवे कहा जाता था। कहा जाता है कि नीनवे के पतन का कारण शत्रु नहीं, नदी की बाढ़ थी, जिसके कारण एक पूरी शहरपनाह गिर गई थी। उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, उस देश से वह निकलकर अशुर को गया और नीनवे, रहबोतीर और कालह को, और नीनवे और कालह के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के संपूर्ण वचन में इस नगर की महानता का वर्णन है। एक प्राचीन लेखक स्टेसिया के अनुसार इस नगर का क्षेत्रफल आज के आंकड़ों में लगभग 55 वर्ग किलोमीटर से अधिक था। निनवे के पाप वही थे जिनके विषय में होशे और आमोस ने इसराइल पर दोष लगाया था, और वह था भोग विलास, अनैतिकता, व्यभिचार और शराब पीना। इसके साथ ही उनकी मूर्ति पूजा और बैरी के साथ निर्दयता का व्यवहार करना योना को इसी महान नगर में संदेश देने के लिए भेजा गया था। हम योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह नगर 3 दिन की यात्रा का था। देखिए, अब योना परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है। पहले तो वह परमेश्वर के आदेश के विपरीत तर्शीश को जा रहा था। उस नगर को पार करने में उसे 3 दिन लगते थे, क्योंकि वहां की जनसंख्या लाखों में थी। आइए अब हम आगे देखते हैं योना 3 अध्याय के 4 पद में। यहां पर लिखा है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। मेरे प्रियो, कहने का अर्थ यह है कि योना को संदेश सुनाने में बहुत समय लगा। उस युग में ना तो लाउडस्पीकर था, ना रेडियो और ना ही टीवी। वह पैदल घूम घूम कर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था। यह वैसा ही है जैसा कोई आज दिल्ली या कलकत्ता में घूम घूम कर प्रचार करे। योना ने भीड़ इकट्ठा कैसे की होगी? उस समय तो आज के समान विज्ञापन का भी प्रबंध नहीं था, सभागारों को किराए पर लेने का भी प्रबंध नहीं था। उसके पास तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या गायक का भी प्रबंध नहीं था। मेरे विचार में वह मृतकों में से जीवित होने के कारण देखने में विचित्र लगता था। मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहने के बाद कोई भी सामान्य दिखाई नहीं देगा। मेरे प्रियो, आपको मेरा एक उदाहरण स्मरण होगा जिसमें मछली के पेट में 2 दिन रहने के पश्चात एक मनुष्य की प्रदर्शनी लगाई गई थी। 20वीं शताब्दी का योना, उसके सिर के बाल उड़ गए थे और उसकी त्वचा भूरी और पीली हो गई थी, क्योंकि मछली के पेट के रसायन उसे गलाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा ही योना के भी साथ हुआ था। वह जहां भी खड़ा होता था, लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाती थी, और वह उन्हें अपनी कहानी सुनाता होगा कि परमेश्वर ने उसे नीनवे के विनाश का संदेश देकर उनके नगर में भेजा था, परंतु वह विपरीत दिशा में भाग रहा था और परमेश्वर ने उसे आंधी चलाकर नाविकों द्वारा समुद्र में फिकवाया, जहां एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। और तब 3 दिन और 3 रात के बाद नीनवे की भूमि पर उगल दिया। परमेश्वर की बात न मानने के कारण उसकी यह दशा हुई थी। लोगों ने उसकी बात सुनी। क्या कोई कभी सोच सकता था कि नीनवे जैसा दुष्ट नगर कभी परमेश्वर का वचन सुनता और योना की बात मानता कि वह मृतकों में से लौटा है? हमारे पास भी एक पुनर्जीवित मनुष्य का संदेश है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 24 और 25 पद में पौलुस कहता है, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। मेरे मित्रों, योना का संदेश था कि 40 दिन में निनवे नगर नष्ट किया जाएगा। मेरे विचार में योना ने बड़ी कटुता से संदेश दिया होगा, क्योंकि वह निनवे से घृणा करता था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि निनवे नगर के लोग बहुत कठोर थे, वे किसी को मारने के लिए कच्चे चमड़े में सील करके धूप में डाल देते थे ताकि तड़प तड़प कर वह मर जाए। मेरे मित्रों, ऐसे कठिन जगह पर जाकर परमेश्वर के वचन की चेतावनी देना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल था, और योना नहीं चाहता था कि वह उस नगर में जाए। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि योना उनसे डरता भी होगा, कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ न हो जाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने के लिए अद्भुत कार्य करता है। उसने योना को समुद्र के मछली के द्वारा उस स्थान तक पहुंचाया ताकि वह अपनी गवाही वहां के नगर के लोगों को सुनाए, और इसके द्वारा से उनके मन में परमेश्वर के कार्यों का विवरण उन तक पहुंचने पाए। यहां पर हम देखते हैं कि योना जब अपने जीवन की गवाही दिया, लोगों ने उसकी बातों को सुना। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी सुना कि परमेश्वर 40 दिन के अंदर में इस नगर को नष्ट करेगा। मेरे मित्रों, आज आपके जीवन में भी बार बार परमेश्वर चेतावनी देता है, हमारे जीवन में, हमारे नगर में, कि हम अपने जीवन को बचा लें। परंतु क्या आज हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं? क्या हम उसकी आवाज को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, या हमारे जीवन में हम सिर्फ यूं ही व्यर्थ में लेकर के उसे छोड़ दे रहे हैं? जिस प्रकार योना 3 दिन तक मछली के पेट में रहा, उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु हम मानव जाति के लिए, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा और कब्र में 3 दिन रहा, और हम देखते हैं कि वह भी मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है, और वही मुझे और आपको हमारे पापों से छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि उसने हमारे पापों की सजा ले ली है। मेरे मित्रों, आइए आज हम भी निनवे नगर के लोगों की तरह परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि हम उस महान आशीषों को प्राप्त कर सकें। मैं आपके साथ में प्रार्थना करना चाहता हूं, जो इस समय अपने मनों को फिराना चाहते हैं, परमेश्वर की ओर आना चाहते हैं। आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हों, और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपकी सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से प्रभु आप हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, कि हम अपने मनों को फिराकर आपकी ओर आ जाएं। हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं और अपने मनों में प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अपनी बुराइयों से हटकर, छोड़कर अच्छे मार्गों पर चलेंगे, और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु आपको अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, आप उनकी सहायता करें, उनके पापों को क्षमा करें, ताकि उनके जीवन में भी शांति और आनंद आने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपने अनुग्रह प्रदान करें, ताकि एक एक जीवन आप में बलवंत और दृढ़ होने पाए। योना के जीवन की जिन बातों को आपने हमें सिखाया है, हम अपने जीवन में ले सकें। इतना ही नहीं, हम इस बात को स्वीकार करने पाए कि आप अद्भुत कार्य करते हैं, आप हमारे मनों को, हमारे हृदयों को बदल सकते हैं। आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन में अद्भुत कार्य करें। हम विनती करते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जिस समय अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, आप उनके मनों की पुकार को सुने, उनके हृदय की आवाज को सुने, और उनके पापों को क्षमा कर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें, ताकि आज के बाद वे एक नए व्यक्ति के रूप में आने पाए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए भी जो अपने जीवन में उन बातों की मांग कर रहे हैं जिसे वे अपने जीवन में पाना चाहते हैं। प्रभु जी, आप उनकी भी सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो अपने पारिवारिक जीवन से निराश और परेशान हैं, अपने जीवन में संतान की चाह रखते हैं। पिताजी, आप उन पर दया दृष्टि करें, उनकी पुकारों को आप सुनें और उनके जीवन में आशीष प्रदान करें। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे जवान भाई बहन अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, अच्छी नौकरी की तलाश में हैं। पिताजी, आप उन सब की भी सहायता करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वे अपने मनों को फिराकर आपकी ओर आते हैं तो आप निश्चय ही उन्हें अपनी आशीषों की परिपूर्णता उन्हें देते हैं। पिताजी, इस घड़ी फिर से एक बार प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आपके सामर्थ्य और पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। आज के वचन के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना है और आज की प्रार्थना के द्वारा से आपने उत्तर भी दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, मुझे आशा है कि आप इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं। मैं यह भी आशा करता हूं कि आप योना के जीवन से उन बातों को सीख रहे हैं जो हम में से हर एक के लिए आवश्यक है, कि हम अपने मनों को फिराएं, न कि किसी से घृणा करें, नफरत करें, बल्कि उनके प्रति प्रेम जगाएं और उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें उत्साहित करें। आज हमें इसी की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे जी।